ओम शांति। एक साल से आप सबको जो भी कुछ दुनिया में हो रहा था वो आप सबको सूचित करता रहा और आप सब ने बहुत ही अच्छी तरह से बाबा का नाम बाला किया। यहाँ तक सारे विश्व में ये आश्चर्य हो रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में कोरोना का इतना कोई इफेक्ट नहीं है, बल्कि वो सेवा कर रहे हैं। तो ये नाम सारे विश्व में आप सब ने करके दिखाया। परंतु मैंने आप सबके साथ एक अपने लिए, जो कराची में बाबा ने मुझे नहीं बुलाया, मुझे आबू में बुलाया, बाबा मम्मा के साथ दादियों के साथ 60 साल से सेवा करता आया हूँ। ये जो कोरोना का समय मिला तो मैंने मुंडी बहन से निवेदन किया कि मुझे ये साल आप कोई भी कार्य में, चाहे क्लास हो चाहे बाबा का, इसमें मुझे आप मुक्त करेंगे तो मैं बाबा की याद में रहूंगा और मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आया। जितना हो सके बाबा के साथ रहने का प्रयास किया। परंतु हम सब भाई बहनों को एक बात पक्का हो गया है कि हम सबको एवर रेडी रहना है। उसकी परीक्षा मेरे साथ अभी अभी हुआ, जो मैं बाबा की याद में था तो निर्वर भाई ने फोन किया, करुणा भाई मैं आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, आप तुरंत जाओ। तो कई बार मेरा और निर्वर भाई जी का, सबको मालूम है हम दो शरीर में रहे, परंतु बाबा ने साथ मिला करके आज तक सेवा कराते गए। तो वो जो भी मुझे कभी कहते हैं तो मैं तुरंत हाँ कहता हूँ। मैं ये नहीं सोचा मैं कभी क्लास में ही नहीं गया हूँ, बाबा का दिन भी नहीं गया हूँ, परंतु मुझे लगता है कि आप सबका प्यार और स्नेह भी, ऐसा अचानक आप सबसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है। बहन जी ने परिचय देते हुए कहा तो ये संदेश वाहक के रूप में दुनिया के हिसाब से मीडिया के हैं, तो पहला एक समाचार आपको सुनाना चाहता हूं जो मुझे मुंबई से गुलजार दादी जी के तरफ से, वहां हमारे जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर प्रताप और बनारसी भाई ने जो कल रात को भेजा है, वो पहला समाचार आपको सुनाना चाहता हूं। दादी जी का स्वस्थ अच्छा होते जा रहा है। दवाइयां पहले से कम किया गया है, ये भी समाचार दिया। तीसरी बात उन्होंने कहा, आप सबका दिल का प्यार और सकाश दादी को पहुंचा है, उसके लिए नीलू बहन ने बहुत आप सबको भी थैंक्स दिया है। अब निर्वर भाई जी ने कहा कि मैंने कहा आपका टॉपिक क्या, मुझे क्या कहना है, तो उन्होंने कहा देखो निर्वर भाई और हम, एक साल का फर्क है। निर्वर भाई एक साल पहले जान में आए, जन्म भी हमारा एक साल का डिफरेंस है, तो बाबा के साथ हम दोनों का समझो लगभग 7-9 साल बाबा के साथ हम सबको रहने का सौभाग्य मिला। मम्मा के साथ मैं 5 साल रहा, तो उन्होंने कहा बाबा मम्मा का अनुभव आपको सुनाना है। तो मैंने कहा अच्छा, थैंक यू। मैं आबू में सन 1960 में 3 दिन का कोर्स के बाद तुरंत मैंने कहा इतना श्रेष्ठ ज्ञान आपको ये कौन दे रहे हैं। तो हमारे हृदय पुष्पा दादी जी थे, तो उन्होंने कहा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा माउंट आबू में ज्ञान सुना रहे हैं। मैंने कहा स्वयं परमात्मा चैतन्य परमात्मा जिनके लिए सारे विश्व ढूंढ रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा चैतन्य परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, माउंट आबू में आ चुके हैं। तो मैंने कहा 3रा दिन ही पूरा हुआ है तो मैं आबू जा रहा हूं बोला। तो आज भी कोई टीचर्स किसी को 3 दिन के कोर्स के बाद छुट्टी नहीं देते हैं, परंतु मैंने जिद किया मुझे जाना ही है। तो उन्होंने इतना ही कहा देखते हैं, बाबा कभी बॉम्बे होते हैं कभी दिल्ली होते हैं, तो आबू में होते हैं है तो फिर आपको छुट्टी देंगे। तो आप जानते हैं ये सन 1960 की बात मैं कह रहा हूं, पोस्ट में भी कोई इन्फॉर्मेशन आने में हफ्ता तो लग जाता है। तो टीचर्स का भी यही रहता है कि भाई स्टूडेंट थोड़ा पक्का तो हो जाए बाबा के सामने जाने के पहले। तो मुझे एक ही पाठ पढ़ाया इन्होंने कि भाई आप जा तो रहे हैं परंतु बाबा आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। मैंने कहा अच्छा, अभी तो 3 दिन का स्टूडेंट और टेस्ट करा रहे हैं बाबा, बाबा परीक्षा कराएंगे तो कौन सा प्रश्न पूछेंगे। तो उन्होंने कहा तो आप पहली बार आए हो बच्चे। तो मैंने कहा पहली बार ही तो आए हो ना। तो नहीं नहीं, आपको कहना है 5000 साल पहले आए थे, 5000 साल पहले मिले थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं बोल दूंगा। परंतु ट्रेन में भी आते आते भी उन्होंने यही पार्ट मुझे पक्का कराया था। तो मैंने कहा हाँ दीदी, मैं बिल्कुल बोलूंगा कि भाई मैं 5000 साल पहले आया था। परंतु जब पहली बार बाबा से मिलने, वो भी क्लास में, बाबा ने मेरे से अचानक जैसे पूछ लिया कि बच्चे पहली बार आए हैं ना। मैंने कहा जी बाबा। हमारे बाबा ने कहा तो टीचर के तरफ देख के, तो आप ये से ये समझ सकते हैं कि बाबा के सामने कोई भी आत्मा जाती है तो उनका जो दिल में है वही बाहर आएगा। सोच के कसने की तो मौका कभी मिला ही नहीं है। मेरा बहुत ऐसे अनुभव है भाई, बाबा से कुछ बातें पूछने के लिए सोच के जाता था, यहां तक कभी चिट्ठी भी लिख के जेब में रख के जाता था, बस बाबा से मिलके बाहर आने के बाद चिटकी याद आती थी, बाबा के सामने कुछ नहीं याद आता था। पहली अनुभव मेरा मम्मा से मिलना हुआ, पहले बाबा से पहले, ये मधुबन का नियम था। मम्मा से मिलते मिलते ही मम्मा ने एक बात मेरे कान में कही, वो भी आश्चर्य से कही, अरे ये तो कलब पहले वाला बच्चा है। मुझे तो समझ में नहीं आया मम्मा ने क्या कहा, पर आज तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि मम्मा को ये पता है कि ये बच्चा देखो अभी 60 साल बाबा के साथ रहे हैं। तो मम्मा की शक्ति क्या है, जो परखने की शक्ति, वो पहली मुलाकात में मालूम हुआ था। तो मम्मा कौन है, मम्मा भी हर बच्चे को जानती थी ये कौन है। तो ये परिचय मेरा पहले मम्मा से, फिर बाबा से। परंतु बाबा से जब मिलने गया, मैं बैंगलोर से आया था उस समय पर, कर्नाटक से, वहां हिंदी इतनी नहीं आती थी। बाबा से मैंने सोचा कि कैसे बात करूं। बाबा ने पहली बार मुझे कहा, जैसे कहते हैं आओ बच्चे, तो ऐसे बाबा ने कहा, यस सन। पहली बार मैंने बाबा के मुख से, वैसे मुरली में तो बहुत बड़े बड़े बाबा के जो ऐसे इंग्लिश के शब्द सब सुनते थे, परंतु जब बाबा के मुख से जब बाबा ने कहा सन, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई बाबा अंग्रेजी भी जानते हैं, तो मैं बाबा से मुलाकात कर सकता हूं। नहीं तो मोस्टली हम लोग समझते थे बाबा की मुरली में, मुरली हिंदी में ही होती है, तो बाबा इंग्लिश, क्योंकि बचपन से बाबा ने इतना कोई पढ़ाई जितना हम लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं ऐसा तो नहीं था, परंतु बाबा अंग्रेजी पेपर पढ़ते थे रोज, वो मुझे मालूम पड़ा बाद में। तो बाबा ने मुझे अंग्रेजी में बात की पहले, परंतु मैंने बाबा से कहा, बाबा आप हिंदी में कहिए, तो हिंदी समझता तो हूं पर बोल नहीं पाता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में कहीं भी आप जाओ तो सभी पिक्चर तो देखते हैं। तो निर्वर भाई भी आ गए तो सभी स्वागत कीजिए। थैंक यू। तो साउथ का जो हमारा नियम था, जैसे संतों से मिलते हैं तो जैसे एकदम धरती पे सो जाते हैं, उद्धार नमस्कार कहते हैं, तो मैं उसके लिए तैयार होके आया था। परंतु मैं ऐसे करूं, उससे पहले ही बाबा ने ऐसे अपना हाथ फैला के जैसे आओ बच्चे जैसे करते हैं, तो कौन जाएगा जब बाबा स्वयं हाथ ऐसे, जैसे आजकल अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का भी फोटो आजकल बहुत फेमस है, बाबा दोनों हाथों से सबका स्वागत करता हुआ। तो पहली बार जब बाबा ने इस तरह से जब अपने हाथों में लिया, बाहों में लिया, गोद में लिया, निर्वर भाई कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिल से प्यार से बाबा ने हम बच्चों को अपनाया। तो जो भी बाबा मम्मा से मिलते थे, उनके मुख से सदा यही आता था कि मेरा बाबा। तो इस प्रकार मेरे से कई बार पूछते, आपको निश्चय कैसे हुआ? निश्चय ज्ञान से, योग से, अनुभव से, वो तो बाद में हुआ, पर पहली मुलाकात से ही, पहली नजर से ही मेरा बाबा, ये निश्चय मुझे हुआ और आज तक भी यही है तो मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा।
ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के सभी नूरे रत्नों, विशेष रूप से महाराष्ट्र और तेलंगाना, दूसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश और साथ में केरला और भी आसपास से भाई बहने जो आए हैं, आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण चारों तरफ लॉकडाउन के कारण मधुबन में ऐसे लगता था कि विनाश हो गया है, समझे ना आप, आना जाना ही बंद हो गया। 50 की छुट्टी मिलती थी, इतने बड़े ग्रुप में जो आते हैं तो उस समय 50 की छुट्टी, वो भी जब बहुत मेहनत करते थे हमारे करुणा भाई, मृत्युंजय भाई और दूसरे भाई, वो सब मेहनत करके कैसे भी 50 की छुट्टी मिली थी। और आज महाराष्ट्र जोन की बात आई, महाराष्ट्र और फिर भूल गया मैं, नहीं साथ में जो बॉम्बे तो है ही महाराष्ट्र में ना, आंध्रा और तेलंगाना। पहले क्या था, सिर्फ आंध्रा कहते थे ना, इजी था, अभी आंध्रा और तेलंगाना दो हो गए, एरिया तो उतना ही है, सेंटर्स भी सभी वही है। तो आप सब पधारे हैं तो देखो अधिक संख्या की भी छुट्टी मिली है, और विशेष रूप से आप सबके आने से और आपसे मिलने से, आपकी बातें सुनने से एक बात बड़ी स्पष्ट समझ में आती है कि एक बार जिसने बाबा का अनुभव कर लिया और ये समझ लिया कि बाप दादा का मधुबन घर जो है वो हमारा अपना घर है, और जहां पर अभी हम हैं वो सेवा स्थान है, चाहे लौकिक घर में भी वहां हैं तो भी उसको सेवा स्थान समझ करके वहां रहते हैं। तो ये विशेष बात, हर एक व्यक्ति को अपने घर लौटने की खुशी तो होती है, आपको भी हो रही है या नहीं? आज की जो ये क्लास है, मैं थोड़ा देर इसलिए कर दी कि कभी कभी अचानक से कुछ समझ में नहीं आता, अचानक से एप्पल खाया और एप्पल खाने के बाद इधर अटक हो गई, हो सकता है ऐसे कभी। आजकल की जो दुनिया में क्वालिटी है चीजों की, उसमें थोड़ा अंतर आ चुका हुआ है। खैर वो तो थोड़ा टाइम का खेल पूरा हो गया, और फिर उसी टाइम मैंने करुणा भाई को फोन किया कि आप चल करके अपना अनुभव सुनाओ, फिर मैं आ जाता हूं। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैं आप सब से क्षमा चाहता हूं। आज का जो विषय मुझे दिया गया है, अनुभव की अथॉरिटी, तो मैं सोच रहा था कि हमारे सभी भाई बहने तो अनुभव से, जब अनुभव किया है कि हम सचमुच आत्मा होकर के कैसे रहते हैं, परमात्मा पिता को जानने के बाद, उनको मिलने के बाद, उनके महावाक्य सुनने के बाद, तब निश्चय हुआ कि हम सचमुच इस समय उनसे सन्मुख मिलते हैं, चाहे अव्यक्त रूप से दादी गुलजार जी के द्वारा मिलते, और चाहे तो योग युक्त होकर के अमृत वेले विशेष रूप से बाबा से मिलते हैं। अन्य समय भी, हाँ, शाम का भी समय होता है, उस समय भी खास टाइम होता मिलन मनाने का। तो ये एक आज दिन तक, हमने तो करुणा भाई ने कहा उनको 60 वर्ष हुए, मेरे को कितने हुए होंगे, इनसे थोड़ा पहले आया मैं, 62 हो गए। जो मैं डेट अगर काउंट करूं तो 62 साल हो गए, और 62 साल में बाबा के अनुभव की बातें मेरे सामने आती हैं। आप देखिए, साकार बाबा ने छोटेपन से लेकर के, उनकी जब आप जीवनी पढ़ते हैं, जीवन कहानी पढ़ी है आप लोगों ने, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, तो एक प्रकार से ये कहें कि बाबा की 93 इयर्स की यात्रा, जब से उन्होंने शरीर धारण किया तब से लेकर के अगर गिनती करें तो लौकिक रीत में भी बहुत अच्छे घर में, आप सब जानते हैं सिंधी परिवारों में कृपलानी फैमिली मशहूर है, बॉम्बे वाले ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, जसलो का हॉस्पिटल वगैरह बनाया, वो उसी फैमिली के लोगों की देन है। लेकिन देखा गया है कि साकार बाबा का पार्ट कुछ अपने प्रकार का था। एक तो पहले उन्होंने जो बिजनेस सपना शुरू किया, आप सबको तो ज्ञान है ही कि छोटेपन से ही गेहूं इधर उधर से ला करके बेचने का, फिर उसके बाद बॉम्बे में जा करके, और फिर हीरे ज्वारात का जो कारोबार है उसको समझने की कोशिश की, और उनकी ईमानदारी के कारण जो भी जिस सेठ के पास सर्विस करते थे उसको बड़ा विश्वास था, सब उनकी जो शोरूम कहो पेडी कहो वहां की सब चाबियां बाबा को दे दी। 2-3 साल बाबा ने उसका अनुभव किया, लेकिन एक आत्मा में संस्कार जो था वो कहीं नौकरी करने वाला नहीं था, वो सीख करके, और फिर सब जानते हैं कहानी में कलकत्ता में जाकर के, कलकत्ता की न्यू मार्केट, उसमें जाकर के अपना बिजनेस शुरू किया। तो इस हिसाब से बिजनेस के अंदर उन्होंने जिस तरह से अपनी वो उनकी परख शक्ति जो थी और बातचीत करके किसी को अपना बनाने की जो उनकी विशेषता थी, राजाओं महाराजाओं के भी लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया, सब कुछ पता है। महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जब भारत में आई थी, कलकत्ता में आई थी, तो उसको बाबा ने डायमंड नेकलेस वो बना करके दिया था। और आज भी अगर आपको वो देखना हो डायमंड नेकलेस, तो लंदन में टावर ऑफ लंदन कहते हैं उसको, वहां पर वो नेकलेस है। वो दिखाते हैं डायमंड्स देश विदेश के कई जगह के उनके वहां, तो सारा ऐसे बेल्ट घूमती है, उस पर रखे होते हैं। तो ऐसे बाबा के जो कारोबार के जो थे संस्कार, एक प्रकार से लौकिक दुनिया में सबसे ऊंचा कार्य तो यही हीरे ज्वारात का, और वो भी फिर राजाओं महाराजाओं के साथ ऐसा संबंध, वो आप कहानी में पढ़ते हैं, जो राजाएं महाराजाएं बाबा को कहें लखीराज हम तो नाम के राजा हैं, सच्चे तो आप राजा हैं। लेकिन आप सब देखिए कि उनके साथ साथ बाबा के जो आध्यात्मिक संस्कार थे वो भी अपना पार्ट बजा रहे थे। आप पढ़ते हैं बाबा बिजनेस में होते हुए भी कभी भी किसी दिन भी पहले पहले गीता पाठ किया करना और उसके बाद कारोबार करना। कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो अपने साथ में गीता माता कहें, गीता शास्त्र कहें, उनका साथ लेकर के चलते थे, पहले पाठ करने का फिर आगे और बातें करने की। और इसके साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप सबको पता है बाबा ने गुरुओं की बहुत सेवा की। वो बाबा खुद जब अपना सुनाते थे साकार बाबा, तो सुनने में बड़ा मजा आता था। एक एक गुरु की सेवा की उन्होंने, ऐसे करते करते। और गुरुओं की सेवा का मतलब तो आप समझ सकते हैं, जिस गुरु को जिस चीज की जरूरत हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो गुरु कोई सन्यासी होंगे, गृहस्थ में भी रहने वाले गुरु होते थे, उनके बच्चों की शादियां भी कराई हैं, वो भी सब बाबा ने पार्ट बजाया। लेकिन उनकी खोज जो थी, सच्चाई की खोज कहो, परमात्मा को प्राप्त करने की खोज कहो, वो खत्म नहीं होती थी। इसलिए एक गुरु की सेवा की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। जब बारहवें गुरु की सेवा में थे तो 1936 में बॉम्बे में चौपाटी के पास कौन सा मंदिर है, बाबुलनाथ, एक्चुअली उसका नाम तो है बाबुलनाथ, बाबा बाबुलनाथ कह रहे थे। बाबुलनाथ मंदिर में उनके बारे में गुरु लाल जी महाराज का उस समय जैसे वो कैंप होता है ना, तो सब तरफ से भगत आकर के वहां रहते हैं, तो बाबा भी अपनी धर्मपत्नी और अपनी बहू बड़ी बहू जो है उसके उनको साथ लेकर के उनके जो उस समय वहां प्रवचन वगैरह वो सुनने के ख्याल से जो उसकी धर्मशाला थी उसमें दो कमरे लेकर के रहे हुए थे, मंदिर की धर्मशाला, और लालजी महाराज का प्रवचन सुनते थे। और फिर सुनते सुनते एक दिन बीच में से उठ करके अपने निवास पर चले गए और वहां पर बाबा को दिव्य साक्षात्कार हुए, जो बाबा के अपने शब्दों में हमें सुनाते कि वो लाइट, लाइट भी और माइट भी, वो सब देखी और फिर उसके साथ वो शब्द भी सुने, निराकार रूपम शिवो हम और क्या क्या बोला है, चिदानंद रूपम शिवो हम प्रकाश स्वरूपम शिवो हम आनंद स्वरूपम शिवो हम सारा। और वो बाबा ने सोचा कि ये तो लालजी महाराज के कारण मुझे साक्षात्कार हो रहे हैं, पर उनको जब सुनाया तो लालजी महाराज ने जवाब दिया, लखीराज मेरे कारण नहीं है, ये उसकी कृपा है, उंगली ऊपर करके परमात्मा की कृपा है, वो उसके कृपा से आपको ये साक्षात्कार हुए। तो भक्ति का अंत हुआ और उसके बाद बाबा ने ज्ञान मार्ग की शुरुआत की। फिर आप जानते हैं कहानी पड़ी होगी, बनारस में जाकर के काफी समय वहां रहे और फिर बनारस में अच्छी तरह से और नए नए साक्षात्कार किए। तो ये बाबा की बातें मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपको थोड़ा आज के विषय के साथ जोड़ना है कि ये प्रैक्टिकल बाबा के अनुभव के आधार से कि लौकिक में बिजनेस का भी अनुभव, राजाओं महाराजाओं के साथ का भी अनुभव, परिवार के अंदर भी सब को इतना खुश रखने का वो भी अनुभव, और फिर उसके साथ में संतों की सेवा करने का भी अनुभव, लेकिन अंदर में आत्मा को एक लगन थी, उस पिता परमात्मा को पाने की, शिव बाबा को प्राप्त करने की, और वो उनकी इच्छा जब साक्षात्कार पहला उनको हुआ और उसके बाद और ज्यादा साक्षात्कार हुए जिसके लिए वो खास बनारस में रहे थे और फिर हैदराबाद सिंध में अपने मकान पर जाकर के सत्संग शुरू किया, ओम का उच्चारण करना, और ओम के उच्चारण के कारण जो लोग वहां आते थे कईयों को साक्षात्कार होता था, बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखते थे, तो नाम क्या पड़ गया, ओम मंडली, जितने लोग वहां आते थे। और फिर उसके बाद बाबा ने देखो शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार ब्रह्मा बाबा ने ऐसी नई शुरुआत की, कभी दुनिया में तब तक कोई माताएं बहने किसी धार्मिक संस्था की हेड नहीं बनती थी, या तो सन्यासी बनेंगे या गृहस्थी भी होंगे तो वो भी भाई होंगे, लेकिन बाबा को शिव बाबा ने ऐसा क्या कहूं इशारा दिया जिसको हमारे कई भाषण करने वाले सुनाते हैं कि एक भाई को अगर आप परिवर्तित करेंगे तो एक को करेंगे, और एक बहन को अगर परिवर्तित करेंगे तो आप सारे विश्व को परिवर्तन कर देंगे। और उसके कारण देखो बाबा ने आठ बहनों और माताओं का, जिनमें तीन माताएं थीं और पांच 18 साल से ऊपर की उम्र वाली कुमारियां थी, उनका ट्रस्ट बनाया। ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा, ये 18 जनवरी 1937 के दिन बाबा ने अपना एक विल लिखा था। ओम मंडली माता के चरणों में मैं लखीराज अपना तन मन धन सर्व अर्पित करता हूं। और उसके बाद बाबा ने अपना जो बाबा की लाल पेंसिल से ही लिखा हुआ सिग्नेचर क्या करते थे, ओम, बस। तब से लेकर के आप जानते हैं मातेश्वरी सरस्वती, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी चंद्रमणि, दादी मनोहर इंद्रा, दादी पुष्प शांता, माताओं में जो थे, दादी जानकी नहीं थी उस समय, शुरू में नहीं थी, बाद में दादी जानकी, थोड़े एक दो साल के बाद, एक साल के बाद। और इस तरह से आप सोच सकते हैं कि दुनिया के अंदर ये बिल्कुल नई बात थी, और खुद बिल्कुल बाबा न्यारा हो गया। ये भी नहीं कि उसका प्रेसिडेंट बन के रहे, मातेश्वरी जी को, सरस्वती जी को प्रेसिडेंट बनाया उसका ट्रस्ट का। और इस तरह से आप सोचिए कि ये एक नई शुरुआत जो थी उसका कारण एक ही था कि माताओं बहनों के लिए उनको कितना रिस्पेक्ट था दिल में, कितना प्यार था, कितना रिगार्ड था। और फिर उसकी रिजल्ट भी देखी कि जो भी ओम मंडली में शुरू में बहनें आईं, माताएं आईं, आप देखते हो उन्होंने क्या सेवाएं की, प्रैक्टिकल देखा सभी ने। एक एक दादी ने अपना जलवा दिखाया सब तरफ। तो बाबा को सबसे पहले तो एक ये नई बात शुरू करने के लिए, और आज की दुनिया में भी, इस समय भी, सारी दुनिया में, अब भारत में हमारे सेंटर्स कितने हैं, 8,000, विदेश में 140 देशों में, वहां भी करुणा भाई कितने सेंटर होंगे, बस आप 350 कहते हो, मैं 500 कहता हूं, 500 के करीब सेवा केंद्र विदेशों में भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भाई बहने, चाहे गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया है, शिवरात्रि के दिन हरेक अपने स्थान पर शिव बाबा का झंडा लहराता है, तो वो क्या सिद्ध करता है, तो कम से कम भी इस समय 20-25 लाख भाई बहने हैं जो ईश्वरीय सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे संबंध से कर रहे हैं ना। आप सब भी तो कर रहे हैं कि नहीं? अपने लिए ताली बजा लो ना। तो ये साकार बाबा को बचपन से लेकर के जो इतना अनुभव था, उस अनुसार ये जो नई शुरुआत की, आप देखो उसके कितने सुंदर नियम बनाए, जो आदि से लेकर के आज तक वही नियम चल रहे हैं। सबसे बड़ा नियम कौन सा है, जो दुनिया में नहीं, कोई गुरु नहीं करते ऐसा, कौन सा है? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, पवित्र जीवन व्यतीत करना है। शुरू में तो ऐसा लगता था ये कैसे होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा, साकार बाबा के सामने कोई बाई चांस किसी की सेवा करके कोई युगल को लेकर के आए, और उसी समय बाबा उनको प्यार से समझा करके, दृष्टि दे करके, और इतना ही कहते थे, बच्चे बाबा जो कहता है उसको मानेंगे? तो बाबा की बात को क्यों नहीं मानेंगे? कहेंगे हां जी बाबा, सचमुच मानोगे? जी बाबा। और उसी टाइम पर शील दादी को, मेरे को एक सीन याद है, शील इंदिरा दादी को कहा, शील राखी लेकर के आओ। उस भाई को राखी बांध दी बाबा ने खुद अपने हाथ से, वो आज दिन तक पवित्र जीवन में है, युगल रूप में है। एक बच्चा पहले से जो है वो है, लेकिन वैसे पवित्र जीवन। तो अभी आप सोचिए, आप सब भी तो प्रैक्टिकल उस लाइफ में हैं। जब से ज्ञान लिया, जब से निश्चय हुआ, तो कौन सी धारणा की, जो संत महात्मा आपको नतमस्तक होते हैं, जिस बात के लिए उन्होंने घर बार छोड़ा, आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आप में इतना मनोबल बाबा ने भर दिया, जो आप गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र जीवन में रह रहे हैं। और ऐसे आज हमारे 20-25 लाख परिवार हैं। तो ये एक विशेष बात अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की। दूसरा है, कई बार दूसरी संस्थाएं हैं, साल में एक दिन वेजिटेरियन बनने की बात करते हैं, एक दिन के लिए, और बड़ी एडवर्टाइजमेंट उसकी करते हैं, बड़े बड़े इश्तहार छापते हैं अखबारों में। और बाबा ने 25 लाख भाई बहनों को स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन बना दिया, इतने तक के लहसुन प्याज भी नहीं, वो भी नहीं खाना है। लेकिन बड़ा साइंटिफिकली उसके गहराई में जाएं, जो कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो मनुष्य को उत्तेजित करती हैं, वो लहसुन प्याज बंद करा दिया। उसके लिए कई लोग बहुत अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा कि अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आपको मन में बहुत शांति रहेगी, नहीं तो उथल पथल होती रहेगी। तो बाबा ने इतने भाई बहनों को तैयार किया, फिर इसके साथ में कभी किसी गुरु ने रोज सत्संग नहीं किया है। गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो सप्ताह में एक दिन रविवार के दिन, मंदिरों में भी थोड़ा जाके ऐसे करके चले जाते हैं, लेकिन बाबा ने देखो इस बात को ले लिया बहुत क्लियर है कि 63 जन्म के जो हमारे संस्कार हैं, जो आदि अनादि संस्कारों में मिक्स हो रखे हैं, द्वापर और कलयुग के संस्कार थोड़े मिक्स्ड हैं, अच्छे भी हैं और थोड़ा उसमें माया के भी हैं, वो कैसे मिटेंगे? इतने 63 जन्म का हिसाब जमा हो रखा है। उसके लिए बाबा ने हम सब के लिए रोज क्लास करने की बात कही। जो रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। वाह, इसीलिए आप यहां बैठे हैं। सिलेक्ट होकर के आए हुए सभी, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आत्मा को जो इतने जन्मों का हिसाब किताब खत्म करना है, उसको फिर से रिफाइन करके सतोप्रधान बनाना है, उसके लिए लगातार रोज सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा के साथ मन लगाना है, तो बाप समान बनने के खास पुरुषार्थ को सामने रख करके कि आत्मा ऐसी पावन बन जाए जो शिव बाबा के समान बन जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ में इस बात को धीरे धीरे रियलाइज किया। एक मुरली है, 15 जून सन 1968 की, अगर आप वो उसकी रात्रि क्लास पढ़ेंगे तो उसमें बाबा ने अपना अनुभव सुनाया हुआ है कि बस अब मैं बाप समान बन गया हूं, दोनों जैसे एक सिक्के के एक साइड दूसरा साइड ऐसे हो गए। आप पढ़ना उसको तो मालूम पड़ जाएगा। तो हम बच्चों को भी बाप समान बनने का लक्ष्य चाहिए, और उसके लिए आप सबको बाबा ने देखो कितना अच्छा साधन दिया हुआ है। और आजकल तो क्या क्या करुणा भाई मेरे को सुनाते हैं, अभी ये टेक्नोलॉजी में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, कहीं पर भी हैं मुरली मिलेगी, कहीं पर भी हैं मधुबन के सारे समाचार मिलेंगे, कहीं पर भी है कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है उसका सारा सीन देखने को मिलेगा। तो ये सब बातें जब देखते हैं तो क्या कहते हैं हम, क्या कहा जाए? प्रैक्टिकल सब भाई बहनों को अनुभवी बनाने के लिए, जिसको अनुभव होता है ना उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो अभी उस अनुभव में चलो, अपने संपूर्ण रूप की स्मृति में आ जाओ। शांति। एक एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जिनके घर में गीता पाठशाला है वो हाथ खड़ा करें। भाइयों का हाथ देख रहा हूं मैं, बहनें थोड़ी कम, बहनें सेंटर ही चलाती हैं इसलिए वो हाथ नहीं खड़ा कर रही हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं, ये भी बाबा ने नई शुरुआत की कि आपके लौकिक स्थान पर भी आप बाबा के शब्दों में कहे तो यूनिवर्सिटी खोल दी जैसे। लेकिन ऐसे घर घर में गंगा बहती है, कम बात है क्या? ये बहुत कमाल की बात है। अधिकतर मुझे पता है ज्ञानवान भाई बहनों के घर में छोटा सा एक स्थान बना देते हैं बाबा के लिए, खास योग का वहां खास अभ्यास करते हैं, कोई आते हैं तो उनको ज्ञान सुनाते हैं। तो सभी भाई बहनों को मैं तो आज यही देख करके आपके निश्चय की और आपके निरंतर स्टूडेंट लाइफ की और उसके साथ में सेवा करने के लिए हर पल तैयार रहने की अपने अपने तरीके से, तन से, मन से, धन से, उसके लिए आपको कोटि कोटि मुबारक दे रहा हूं। आप सब अनुभव की अथॉरिटी स्वयं बन गए हैं। ये भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपने अनुभव से किसी को सुनाते हैं ज्ञान की बात, धारणा की बात, तो उनको वो जचती है और उसके कारण आप कभी सोचेंगे हम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लेकिन नहीं, आपको बाबा ने बहुत बड़ा कार्य दिया हुआ है सेवा का और बहुत अच्छी तरह से आप सब कर रहे हैं और करते रहना है जब तक है। अभी कितने दिन बाकी हैं सतयुग आने में? थोड़े से दिन बाकी है भाई। ओम मंडली को कितना टाइम हो गया, 1936 से लेकर 100 साल के लिए बाबा कहते थे ये 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है, तो 100 साल पूरा होने में तो बहुत थोड़ा रह गया टाइम। इतने थोड़े टाइम में सारे विश्व की आत्माओं तक संदेश पहुंच जाए, उसके लिए तो आजकल बहुत साधन है ना। भ्राता जी आ गए, अब वो आपको रिफ्रेश करेंगे। ब्रिजमोहन भाई का स्वागत करते हैं। आओ